संन्यास लेने के बाद में पूरी पहुंचे। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में विचार हुआ, उसमें वेदांत के ऊपर में विशेष करके विचार हुए, और उसमें वेदांत सूत्र के पहले जो चार पांच जो सूत्र हैं उन्हीं पर हुआ। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्म आदर्श जतः, शास्त्र जोनित्वा, तत्व सम्बन्नाति, ये चार ही प्रधान करिए समझो, इन्हीं के ऊपर में हुआ। किंतु और भी सूत्र कुछ आए, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वा, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा जी भगवान का रूप नहीं। ये सब प्रसंग में आया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म अतः ब्रह्म जिज्ञासा भवति, ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ये ब्रह्म कौन है। तो इसी पर विचार करते करते सात दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भगवान को निर्विशेष, निशक्ति इत्यादि बतलाया, निर्गुण इत्यादि बतलाया। महाप्रभु जी ने उनके विचारों का खंडन कर उन्हीं के सूत्रों, उन्हीं के द्वारा उच्चारित सूत्रों अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्, और पहला और दूसरा तीसरा चौथा, इसके द्वारा उनके विचारों का संपूर्ण खंडन कर ब्रह्म तत्व को सविशेष स्थापित किया, और उनका रूप भी है। और दूसरे सूत्रों के द्वारा उन्होंने कहा कि भगवान तो अरूप है, अरूपवत एव ही। महाप्रभु जी ने विशेष रूप से इसका खंडन किया है, अरूपवत ये शब्द ही नहीं बनेगा, ये तो इसलिए है, अरूपवत रूपवत नहीं, अरूपवत नहीं, रूप ही उनका प्रधान है, भगवान अरूप नहीं है बल्कि क्या है, अरूपवत एव ही नहीं रूप, ये ठीक नहीं, बल्कि उनका रूप ही प्रधान है, वो स्वयं रूप है, वो सगुण है, उनका रूप है, उनमें सारे गुण हैं, इस तरह से उसकी स्थापना है। स्थापना के बाद में उन्होंने उनको भगवान के रूप में दर्शन किया, षड़ रूप, षड्भुज रूप में दर्शन किया, उनको कृतार्थ किया, और राय रामानंद को भेंट करने के लिए गए। राय रामानंद से भेंट हुई, और तत्पश्चात वहाँ से लौट करके वेंकट जी के फटके के घर पर गए। इन दोनों बातों की अभी वो स्मरण खूब अच्छे अभी तो हाल में हुई है। यहाँ पर गए किस लिए गए, रामानंद के पास में गए ये तो बात ठीक है, किस लिए गए, अपने तीन भावों को आस्वादन करने के लिए, इसलिए तो वहाँ पर गए, इसलिए विशाखा जी से शिक्षा लेने के लिए उस स्थान पर गए, और उन्होंने पूरी शिक्षा उन्होंने ली। पहले के जो दास्य सख्य बात्सल्य से लेकर के और पहले तक रामानंद के पास में जाने का ये प्रयोजन नहीं था, पहले जो ये नहीं ये नहीं, यह बात जी हो बात जो, इसके लिए महाप्रभु जी नहीं गए, ये तो और लोगों को दिखलाने के लिए ये सब बातें हुई अनाधिकारियों के, जो लोग समझे इस चीज़ को। और मत कृष्ण मति क्या, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, यहाँ से इन्होंने इति किया। इति करने के बाद भी आरंभ उनका हुआ राधा जी का भाव, रस विचार, कृष्ण तत्व रस, कृष्ण तत्व राधा तत्व रस तत्व और प्रेम तत्व। महाप्रभु जी ने विशेष रूप से पूछा, ये राय रामानंद और उनके विचार का सबसे प्रधान भाग है जिसके लिए वो गए थे, और उन्होंने इसको लिया। इन सब भावों को स्मरण करते हुए महाप्रभु जी भाव में गदगद होते हुए यहाँ पर पहुँचे, श्री रंग में पहुँचे। यहाँ पर ये कैसे क्यों, ये पहले राय रामानंद की गोदावरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना, कावेरी की गोदावरी। राय रामानंद से कहाँ भेंट हुई, कावेरी क्यावरी क्या कर रहा है, श्रीरंगम में, वहाँ नहीं, यहाँ आओ। जब यहाँ से चल रहे हैं पुरी से तो रास्ते में राजमहेंद्री पड़ती है गोदावरी के तट पर, इसलिए पहले राय रामानंद से भेंट हुई। और इसको पार करके मद्रास को भी पार करके एकदम जब नीचे चले गए कन्याकुमारी के निकट में, वहाँ पर कावेरी नदी है, वहाँ पर कावेरी के तट पर श्रीरंगम है, इसलिए तब श्रीरंगम में पहुँचे। इसलिए राय रामानंद संवाद के बाद में महाप्रभु जी से उनकी, इन तीनों भाइयों की और उनके लड़के गोपाल भट्ट से भेंट हुई। विशेष करके महाप्रभु जी के उपहारों में राय रामानंद संवाद का अंतिम जो रसराज महाभाव इत्यादि था ये सब छा रहा था, इसलिए इसकी छाया जरूर पड़ी होगी उनके कथन में। महाप्रभु से और इन लोगों से जो बातें हुई, महाप्रभु एक ही बार में वहां पर नहीं पहुंच गए, 4 महीने रहे, धीरे 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 प्रारंभ से ये बतलाए होंगे। ये लोग बड़े अद्भुत विद्वान थे, तीन भाई, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद। इनमें तीनों में भी प्रबोधानंद सरस्वती सब में विद्वान थे, सब शास्त्रों में पारंगत थे। गोपाल भट्ट की उम्र उस समय 10-11 वर्ष की। महाप्रभु के भावों से, कीर्तनों से और कुछ छिटपुट विचारों से बड़े ये लोग प्रभावित हो गए और वैष्णव समझ करके अपने घर में ले गए, एक निभृत घर दिया, एकांतिक घर। और पिता वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को गोपाल भट्ट को, जो 11-12 वर्ष के थे, उनको आदेश दिया कि ये जो सन्यासी हैं, बाल सन्यासी, इसकी तुम सेवा करना। क्या सेवा करना है, घर में ठाकुर जी हैं, क्या ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी नारायण, माने वही जो श्रीरंगम में है रंगनाथ, उनके ही उपासक हैं, ये लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज ये हैं तत्व, तो पासी में मंदिर, वहाँ से प्रसाद आ जाता है, तो ये गोपाल भट्ट प्रसाद लाते हैं। और कावेरी में जब स्नान महाप्रभु करने जाते हैं तो ये क्या करते होंगे, उनके सूखे कपड़े ले जाते होंगे, और जब वो महाप्रभु जी दूर कॉफी इत्यादि पहनते होंगे तो उनको भीजे हुए कपड़े लाते हैं, कभी हो सकता है कि उनके चरण भी दबाते होंगे, पानी ला देते होंगे, इनकी सैया को लगा देते होंगे। ये जो नौकर नहीं, प्रेम से एक अपने अतिथि की, मान्य अतिथि की सेवा करते थे। महाप्रभु का रूप ही ऐसा था जो किसी को आकर्षण कर ले, उनका कीर्तन का विलक्षण भाव था, ये इन्होंने बतलाए सर। इनको देख करके चारों की बड़ी श्रद्धा थी, विशेष करके गोपाल भट्ट का हृदय कैसा था, अभी निर्मल था, अभी छोटे बच्चे अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उस समय में आदि मध्य और उपाधि तक भी वो छोटे उम्र में पास कर गए हों, और उनसे शास्त्राभ्यास श्री वेदांत, वेदांत माने कौन सा, श्री भाष्य पढ़ रहे हों, रामानुज के और जितने भी शास्त्र हैं वो सबको पढ़ रहे थे, किंतु अभी चित्त निर्मल था। वो लोग तो तीन तो दीक्षित थे, हो सकता है कि इन्होंने दीक्षा दे दी दे हो, किंतु अभी ये सब उनका इतना परिपक्व नहीं था। महाप्रभु की सेवा कर, महाप्रभु की जब सेवा करता होगा तो कुछ बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, जो राय रामानंद इत्यादि के साथ में विचार हुआ, ये सब बातों को हो सकता है कि गोपाल वेंकट भट्ट और त्रिमल्ल भट्ट और उनसे अभी प्रारंभ में ये सब बातें नहीं कहते होंगे, किंतु ये बालक होने के नाते कृष्ण की लीला चरित्र और इन सब चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से इस बच्चे को पढ़ाते थे, बतलाते थे, और उसके ऊपर में छाप पड़ जाती।
किसके बातों की छाप होती है?
जिस पर अनन्य श्रद्धा हो।
अभी आप लोगों में से जिन लोगों की हमारे प्रति श्रद्धा है, तो जो हम बतला रहे हैं उसकी छाप लग जाएगी और जीवन भर भी उसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। आज जिनकी श्रद्धा नहीं है, ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ऐसा संस्कार नहीं पड़ा है, अभी विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से कुछ निकाल देंगे, दो एक बातें लेंगे, फिर उसको भी भूल जाएंगे। जिनकी पक्की श्रद्धा हो गई है, उनके विचारों को वेद का की वाणी समझ करके उसको ग्रहण करें। इन पर यह सब प्रभाव पड़ता जा रहा है। जहां पर वो तीनों होते थे और ये बच्चा होता था, चारों मिलते थे, तो ये तो श्री संप्रदाय के उद्भट विद्वान थे, विशेष करके हमारे प्रबोधानंद सरस्वती। तो उस समय क्या बात होता होगा? महाप्रभु जी बड़े चतुर हैं, कैसे इनकी श्रद्धा को हम स्थापित करके अपने विचारों की छाप लगाएंगे? इसलिए श्री संप्रदाय के ग्रंथों का अनुशीलन, विशेष करके श्री भाष्य, और उसी में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जब होगी तो उसमें नारायण को परतत्व कहा गया। श्री भाष्य में बोधायन बोधायन टीका का विशेष करके उसमें लिया गया, जिसको चोरी करके कुरेश ला रहा था रामानुज, उसको छीन लिया गया बोधायन, और टंक का ये वैष्णव भाष्य थे। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जी उन लोगों से पूछते होंगे या अपने बतलाते होंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये तीन लोग तो विचार करते हैं, उन्होंने रामानुज प्रमाणिक हैं, उनके विचारों को ये कहते होंगे महाप्रभु जी हाँ हाँ सुन करके अब फिर तब क्या स्थापन करते हैं? कृष्ण ही परतत्व है, वो तो नारायण नारायण कर रहे हैं, किंतु ये क्या स्थापित कर रहे? जैसे साध हम भट्टाचार्य को सात दिन सुन करके और फिर उन्हीं के विचारों के द्वारा, उन्हीं के विचारों का खंडन करके कृष्ण तत्व की प्रतिष्ठा की। पर ब्रह्म उन्होंने बताया किसको? कृष्ण को। किस लिए? तत्व की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, तत्व सिद्धांत की दृष्टि से और रस विचार से सबको लाएंगे, लेकर के धीरे धीरे सिद्ध किया कि कृष्ण ही परम तत्व है। गोपाल भट्ट ने तो आसानी से मान लिया, किंतु ये तीनों नहीं, धीरे 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 बढ़ रहा है, श्रद्धा है इसलिए वो सब सुन रहे हैं। महाप्रभु जी ने देखा हमने जो कुछ बतलाया गोपाल भट्ट, तो ये इसके ऊपर में तो छाप पड़ी, किंतु इन तीनों के ऊपर में कुछ संदेह है, ये नारायण ही पर तत्व है, क्योंकि वो बहुत शास्त्रज्ञ हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने बड़ी चलाकी से शास्त्र विचार में अधिक नहीं जा करके बड़े सरल ढंग से उनसे प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? तुम्हारी लक्ष्मी जी तो बड़ी पतिव्रता है, तो वो नारायण को छोड़ करके कृष्ण के तरफ में वो जो झुक गई पाई कि नहीं, ये नहीं बतलाया, तो ये कैसे? नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी जो कि ब्रह्मा रुद्र इत्यादियों के भी उपास्य हैं, जिनकी उपासना करते हैं, और वो नारायण को छोड़ करके सुनते हैं जब बेल वन में तपस्या करने के लिए गई, क्यों गई, बात क्या थी? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं सुना जब कभी गई। उन्होंने कहा ये तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कैसे? कस्यानुभावो अस्य न विद्महे परसाधिकार जद वांछया सी लल्ला आचरे तप विहाय कामान सुचिरम हृतप्रथा। सुचिरम बहुत दिनों तक कृष्ण को पाने के लालसा से उन्होंने व्रत किए, कठोर व्रत किए, किंतु भागवत में नहीं, नहीं लिखा के पा लिया, बस व्रत धारण करने का है। महाप्रभु ने कहा जी ये देखो इसमें है, तुम लोग हनुमत भाष्य है, श्री रामानुज के शंकर के वो हनुमत बहुत विद्वान आदमी है, उनके भाष्य में देखो जी इसका क्या अर्थ है, कस्य अनुभव का। तो उन्होंने देखा तो वही लक्ष्मी जी नारायण की उपासना छोड़ करके कृष्ण की उपासना करने के लिए बिंदास क्यों आई? नहीं पाया इसका पीछे हम विचार करेंगे, किंतु क्यों आई? तो उनकी बुद्धि ठहकी, तो हम तो ये विचार को जानते नहीं है ये क्यों आई। किंतु देखो अब तक 3 महीने में उनकी पूरी श्रद्धा महाप्रभु जी के ऊपर में हो गई है, क्योंकि शास्त्रों का विचार सुना, उसके महाप्रभु जी के बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याओं को सुना, उनकी युक्ति और विचार को सुना, शास्त्री भागवत के विचार सुना, इसके लिए उनकी पूर्ण श्रद्धा। अब महाप्रभु ने कहा अब क्षेत्र तैयार हो रहा है, और तब उन्होंने इस विचार तत्वत नारायण और कृष्ण श्री स कृष्ण श्री स कृष्ण स्वरूप सिद्धांत तत्व सिद्धांत तत्व के सिद्धांत की दृष्टि से न सिद्धांत के दृष्टि से नहीं, ये गलत है, तत्व की भी ये ठीक नहीं, पूरा नहीं। इसलिए तत्वों का जो विवेचन रूप जो सिद्धांत है, इसका विवेचन जब हम करते हैं तो इस दृष्टि से नारायण श्री ईश्वर और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे, जैसे चांद एक ही तत्व है, इसमें बात 16 कलाएं हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसी तरह से ये सब कृष्ण में ही ये सभी कुछ हैं, एक तत्व है। किंतु रस के विचार से, रस तत्व के विचार से इनमें तारतम्य है। वो क्या तारतम्य है ये उनको बतलाया, जो कृष्ण में रस के विचार से कृष्ण रसो वैश्य है, यह वेद उपनिषद कहते हैं, उन्होंने माना। रामानुज का भाष्य इत्यादि, गोविंद भाष्य में भी इस सब का विचार किया गया है, वो भी है। इस तरह से उन्होंने इन सब के ऊपर में प्रमाणित किया है जो कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, और अखिल रसामृत सिंधु में नारायण में जो है वो केवल अढ़ाई रस ही हैं, शांत दास्य और सख्य या सख और बात्सल्य तो है, सख का आधा माने क्या ऐश्वर्यांश इनमें केवल है, बाकी सब जो रस है इतने भट्ट का नट्य भट्ट नट्यम इत्यादि हैं, और सब शास्त्र के विचार हैं, श्रीमद् भागवत में इसका विचार किया गया है, इसलिए और सब मल्लानाम अशनी इत्यादि में दृष्टि में द्वादश रसों का वर्णन किया गया है, इसलिए कृष्ण में द्वादश रस परिपूर्णतम मात्रा है, नारायण में इनमें से कुछ ही है, अढ़ाई रस केवल है। इसमें इसलिए उनके रसों की उत्कृष्ट से लक्ष्मी जी को लोभ पैदा हुआ कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, जब श्रुतियों को हुआ सबको हुआ तो इनको लोभ बना, असंभव बोलता। किंतु वहां पर तपस्या करके गोपियों का अनुगत्य नहीं होने के वजह से कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी वो सिद्धि नहीं हुई, गोपी घर में जन्म लेना पड़ेगा, गोपियों के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा, भजन करने के बाद में तब सिद्धि हो। अनुगत्य में भजन करने का क्या तात्पर्य, गोपियों के अनुगत्य में भजन करते हैं इसका क्या तात्पर्य है, गोपियां किस प्रकार से राधा जी के, ललिता विशाखा या चंद्रा पद्मा इत्यादि के अनुगत्य में श्यामला और भद्रा इत्यादि अष्ट सखियों के मन में उनके अनुगत्य में दिन और रात 24 घंटे में क्या क्या सेवाएं किस भाव से करती हैं, यह है अनुगत्य ना? 24 घंटे जो सेवाएं करती हैं उसमें कुछ नित्य है, नित्य सेवाएं हैं, और कुछ तात्कालिक हैं, सेवाएं होती हैं कभी कभी, तात्कालिक माने क्या, नित्य सेवाओं में भी कोई तात्कालिक समय ऐसा उपस्थित हो गया उपयोगी, जैसे मान लिया कि तात्कालिक, कैसे तात्कालिक सेवा, जैसे शंखचूड़ आया और उसने देखा जे रास हो रहा है और उनको हरण करके ले गया होगा, कृष्ण बलदेव उसके पीछे दौड़े, उस समय ये गोपियां क्या करेंगे, क्या करेंगे गोपियां, उस समय राधा जी की जो सेवा होगी ये तात्कालिक उस समय के अनुसार में उनकी सेवा हो, और बाकी अष्टकालीय जो लीला सेवाएं हैं ये नित्य हैं, ये तो होंगी, उसमें तात्कालिक कभी कभी हो जाया करती है। तो ये सेवाओं के अनुसार में प्रतिदिन का उनकी क्या सेवा है उस सेवा में उन गोपियों को गुरु बना करके उनके भावों का अनुसरण करना। कैसे? कृष्णम स्मरण जनंचस्य निसमीत कथा रताश्च पूजात ब्रजवासिष्ठ। इस प्रकार से उनके अनुगत्य में तो उस समय मैं विश्वभानु नंदिनी की कोई दासी हूँ। हमारा जन्म कहाँ हुआ? बरसाना में। विवाह मेरा कहाँ हुआ? जावट में। फिर हमारा रूप कैसा है, गुण कैसा है, सेवा कैसा है, ये सब के अनुसार में जब भजन करते हैं तो ये गोपी काम करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा जावट में विवाह होगी, कृष्ण को छोड़ कृष्ण से शादी तो कर लेती किंतु एक गोप गोप के साथ में शादी करूंगा ये तो मेरे लिए संभव पर नहीं, ये असंभव। इसलिए उनके अनुगत्य में भजन नहीं करके ऐसे ही कठोर तपस्या कर रही हैं। हो सकता है कि कृष्ण का कोई मंत्र भी जप रही है किंतु ये गोपाल मंत्र नहीं होगा। हो सकता है वो कर रहे होंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये भागवत में लिखा है। लोग कहते हैं कि भागवत में लिखा है इसलिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है ओम नमो भगवते। इसके भजन करते हैं कि ये नारद ने किया था, ध्रुव जी ने किया था इस मंत्र को, इसलिए हम लोगों को करना यही ठीक है। इसलिए बहुत से संप्रदाय में इसी की दिया जाता है। तो ओम नमो भगवते, ये तो भगवते माने क्या हुआ ऐश्वर्य, भगवते आप वासुदेव क्या हुआ चतुर्भुज कृष्ण हुए, इनकी उपासना नारायण की उपासना सिद्धि शादी हो गई। यदि इस तरह से करें तो ब्रज के कृष्ण को कैसे पाएंगे, नहीं पा सकते। इन सबका महाप्रभु जी ने बड़े युक्ति और विचार के साथ में इन लोगों से बातें की और इसका प्रभाव हुआ कि कृष्ण के रस विचार को उन लोगों ने समझा और धीरे 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 अपने भावों को बदल करके और इन किया। किंतु इनको विशेष रूप में दिया गोपाल भट्ट को, क्यों? कोरा कागज है, इस पर सारी भावनाओं को अच्छी तरह से उस पर लिख दिया है। इसलिए गोपाल भट्ट पर बहुत उनकी विशेष कृपा हुई। इस तरह से ये सारा वेदांत भी हुआ होगा और इसके बाद में राय रामानंद संवाद के ये सब विचार हुए होंगे और तब उन लोगों को इस संप्रदाय में उन्होंने लाया। संप्रदाय का परिवर्तन की बात इन्होंने कही, संप्रदाय का परिवर्तन कहो, यहाँ पर हम संप्रदाय को परिवर्तन कर रहे हैं, तब तो वो अपने आप सब हो जाएगा। उन्होंने संप्रदाय का परिवर्तन करके नारायण की सेवा छोड़ करके लक्ष्मी जी की ये कृष्ण की सेवा की। इस बात को इस तरह से समझो, माँ प्रभु जी चतुर रसिक खिलाड़ी हैं, उनके भक्त लोग भी हैं। जैसे हरिदास इत्यादि को जवन कुल में उत्पन्न करा करके दूर देशों में और वहाँ से ले आए अपने निकट। अद्वैताचार्य का जन्म कहाँ था? श्रीहट्ट में। इनका भी पूर्व बंग स्थान में ही हरिदास ठाकुर का जन्म था। ये जो हमारे भारतवर्ष से लगा हुआ बांग्लादेश का है, खुलना नहीं क्या, जसोर जिला में बुड़न का। अच्छा, मुसलमान कुल में जन्माया। ये कौन थे? ब्रह्मा जी या प्रहलाद के, वहाँ पर जन्मा करके फिर ले करके आए। लोग समझते थे ये मुसलमान, अरे मुसलमान कुल को भी इसने भगवान की भक्ति में लगा दिया। इसी तरह से ये दिखलाने के लिए कि दूसरे संप्रदाय में भी विश्व ये रामानु संप्रदाय में भी इसी संप्रदाय का व्यक्ति भी इतना बड़ा भारी विद्वान। और इन तीनों को महाप्रभु जी ने इसमें ला दिया, इसलिए पहले से ही अपने परिकरों को ही वहाँ पर जन्म दिलाया है। ये तीनों कौन थे? महाप्रभु जी के चार प्रबंधानंद सरस्वती को क्या कहते हैं? गुण तुंग विद्या। और ये गोपाल भट्ट जी, तो ये सब लोग उन्होंने ये परिकल्पना करके ये वहाँ पर जन्म दिया था, इसलिए उनका स्वरूप ठीक ही था। वो लोगों को दिखलाने के लिए ये देखो तो महाप्रभु का कैसा प्रभाव, जो वहाँ पर उनको खींच करके अपने संप्रदाय में ले आए। वो तो बहाना मात्र था, लोग समझें इतने बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी दूसरे संप्रदाय में रहते हुए भी महाप्रभु के प्रभाव से कृष्ण की उत्कर्षता, राधा जी की उत्कर्षता समझ करके और इस संप्रदाय में दीक्षित हुए, तब तो महाप्रभु पद। महाप्रभु जी ने यही किया, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान जैसे केशव काश्मीरी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे दिग्गज विद्वान, राय रामानंद जैसा अद्भुत, और ये लोग सबको, थोड़े से आदमियों को अपने चरण में झुका दिया, सारा विश्व उनके चरण में झुक गया। ऐसा ही होता है श्रील प्रभुपाद, कुछ लोगों को ऐसे अपने चरणों में आश्रित किया और उनके माध्यम से सारे विश्व को धीरे 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 उन्होंने प्रचार कर दिया। ये प्रचार करने की महापुरुषों की ऐसे ही शैली होती है, इसलिए ऐसा करा है। अब रात अधिक हो गई, 8 बजने लगा और हमको भी अधिक नहीं बोलना चाहिए। इन सब तत्वों को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में प्रवेश कर उनके भजन प्रणाली रूप गोस्वामी और गोपाल भट्ट की भजन प्रणाली में प्रवेश करके आप लोग अपने जीवन को सार्थक करें और गोपाल भट्ट जी हम लोगों पर कृपा करें, यही प्रार्थना करके आज का विषय। भजन भी कर रहे हैं, क्या कारण है कि भजन में जैसी निष्ठा होनी चाहिए अभी तक निष्ठा क्यों नहीं हो रही? जैसे रुचि होनी चाहिए ऐसे रुचि नहीं हो रही। यदि किसी के भजन में निष्ठा हो जाए तो उसे कुछ भी रूल रेगुलेशन मानने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितने नियम विधि और निषेध इत्यादि हैं ये किन लोगों के लिए है? जिनका अभी भजन अनिष्ठिक है, अनिष्ठित भजन, निष्ठा नहीं है। पहली स्थिति में भजन में जब हम प्रवेश करते हैं कुछ अभिमान होता है कि मैं अब भजन करने लग गया, किंतु यथार्थ में वो भजन नहीं है। भजन में जब तक निष्ठा नहीं होती तब तक अनिष्ठता भक्ति जो होती है देखने में, किंतु उसमें बुद्धि निश्चित ही नहीं रहती। न तो भगवान के भजन में कोई उतना विश्वास होता है। निष्ठा माने क्या? परिपक्व विश्वास। इसलिए हमारा मन इधर उधर चंचल होकर के दौड़ता है, हम समझ ही नहीं पाते कि भक्ति क्या है। हम भक्ति के बाह्य भावों को देखकर और उसमें हम लगे रहते हैं और हमारी सांसारिक जो भावनाएं वासनाएं हैं वो चलती रहती हैं, इसलिए निष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए इन चीज़ों को समझ करके हमारे कहाँ दोष हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र में लिखा एक बात कि खुदपायनुघासन भक्ति परेशानुभव विरक्ति अनैत्र चैस्त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नत सुतुष्टि पुष्टि खुदपायनुघासन। और इसके पास ही पास एक और श्लोक है, पेड़ की जड़ में जैसे जल दिया जाता है, यथा तरो मूल निसीचनेन त्रिप्यन्ति तत् भुजोपशाखा प्राणोपहारोच्च जथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युते। इन दोनों श्लोकों पर अच्छी तरह से विचार करने से हम देखेंगे भक्ति यदि किया जाए, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, ये तीन चीज़ एक साथ में होता है। क्या क्या चीज़? भक्ति साधन भक्ति, यहाँ पर साधन भक्ति समझो, भाव भक्ति कहो। भक्ति करने से भक्ति किया जाएगा, परेश अनुभव, परेशानुभव माने क्या,
पर जीव और जगत से जो श्रेष्ठ जो पर वस्तु हैं उनकी अनुभूति कुछ होगी, परेशान भव। और जितने रूप में ये पर जो ईश हैं, कौन पर ईश हैं? कृष्ण हैं। कौन है? सर्वशक्तिमान है, अखिल रसा में सिंधु है, और यही परतत्व है। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सब गुणों के मूल हैं, अखिल रसा में सिंधु, बड़े दयालु। इनका कुछ कुछ अनुभव होगा भक्ति करने से। भक्ति किसकी? इनकी। किनकी भक्ति? कृष्ण की। यदि हम भाई कृष्ण को यहाँ पर समझने से कृष्ण है अनुपरिकर दोनों समझ, इनकी यदि हम भक्ति करते हैं तो साथ ही साथ में इनकी अनुभूति होगी कुछ कुछ, और साथ साथ में विरक्ति अन्यत्र अन्यत्र सब कामों में, सब विषयों में, समस्त प्रकार की कामनाओं में, समस्त प्रकार की इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं बाहरी कृष्ण भक्ति को छोड़ करके, उनमें विरक्ति अवश्यम भावी है, निश्चित हो। कृष्ण की भक्ति करते हैं, अनुभूति कुछ नहीं हुई, और अनुभूति नहीं होने के वजह से हमारी संसार में आसक्ति परिपूर्ण रूप से है या आंशिक रूप में है, तो समझो जी हमारी भक्ति नहीं हो रही, अनुभूति भी नहीं हो रही और विरक्ति भी नहीं हो रही। उदाहरण दिया, यदि हम भोजन कर रहे प्रति ग्रास के साथ साथ में, ये ग्रास का भोजन करना, भोजन करना है, ये है भक्ति है? भोजन करना क्या है? ये उदाहरण के रूप में जो उदाहरण दिया वहां पर पहले भक्ति, परेश अनुभव और विरक्ति। जब भक्ति का हाथ से उठा करके कुछ इंद्रियों के द्वारा खाना भोजन करना, वैसे भगवान के प्रति हमारे तन मन वचन की सारी चेष्टाएं, अखिल जितनी प्रकार की चेष्टाएं हैं, निवृत्ति परक और प्रवृत्ति परक, अर्थात अनुकूल चेष्टाएं और प्रतिकूल को वर्जन, और मानसिक जितनी भी प्रकार की भावनाएं हैं, कौन सी? निवृत्ति परक, स्नेह मान प्रणय ऊपर तक भी चला जाए, एकदम भक्ति के निम्न प्रदेश से लेकर, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये सब, ये मन की प्रवृत्ति नहीं है। मन की प्रवृत्ति कहाँ पर तक है? शारीरिक चेष्टाएं हैं, हम अर्चन करते हैं, फूल तुल लाते हैं, ये तो शारीरिक चेष्टाएं हुई। मन से क्या, उसके साथ साथ में अर्चन जो करते हैं उसके साथ में मन की भावनाओं को लगा देते हैं कि इस रूप में कृष्ण के प्रति, अपने उपास्य के प्रति क्या भावना रख करके करते हैं ना? ये मन की प्रवृत्ति हो गई। और इसके बाद में अनुभूति होने पर कृष्ण के साथ में आत्मा क्या क्या संबंध है, इसका विचार करके जब कुछ करेंगे तो ये क्रियाएं हैं। तो भक्ति की ये क्रियाएं जब होने लगेंगी किसके प्रति? परेश के प्रति। इसका तुलना का स्थल क्या है? भोजन करने से तृप्ति होती है, बड़ा अच्छा लगता है, पेट भरने लगता है। आपने 10 ग्रास खाया पेट नहीं भरा, 20 ग्रास में आपका पेट भर जाना चाहिए, 20 ग्रास में भी आपका पेट नहीं भरा या आंशिक रूप में भी नहीं भरा तो क्या समझो? गड़बड़ जो है, रोग है, अनुभूति नहीं हो रही है खाने के बाद में, अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, राबड़ी और रसगुल्ले आपको दिए जा रहे हैं और खा रहे हैं, न तो स्वादिष्ट लगता है, न पेट भरता है, न तृप्ति होती है, तो फिर क्या समझो? गड़बड़ी। ये अनुभूति जो है ये परेशान हो, और खाने की इच्छा का ह्रास होना, अब नहीं खाएंगे, अब मत दीजिए, इस पर फिर डाल दिया, अब मत दीजिए, फिर भी डाला तो ऐसे कर दिया जी, अब पत्ता उठा लिया, बोल दिया, ये तो होगा ना नहीं, या उठ करके चल दिया, अब भाई अब हमसे नहीं, ये तीन चीजें यदि नहीं हो रही हैं, भोजन कर रहे हैं और भोजन का रसा स्वाद और आपका पेट नहीं क्रमशः भर रहा और दूसरी चीजों की खाने की इच्छा भी लालसा बनी हुई है, पेट भर भोजन कर लिया और खाने की इच्छा बनी हुई है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है ना? खा लिया पेट भर और फिर भी खाने की इच्छा रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं खाएंगे। इसलिए तीन चीजें जरूरी है, भक्ति मैं पहले भोजन, भोजन के साथ साथ में रसा स्वादन उसका और धीरे धीरे पेट का भरना और तृप्ति हो जाना, ये दूसरा। और तीसरा क्या, अब खाने की इच्छा संपूर्ण रूप से दूर हो गई या आंशिक, जितना खाते जाएंगे खाने की इच्छा भी, खाने की बढ़ खा रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है लालसा, तब फिर क्या हुआ, तब तक गड़बड़ है। भौतिक उदाहरण है उसका, सब कुछ इसमें नहीं आएगा, अप्राकृत भक्ति का सब कुछ उदाहरण किसी भी उदाहरण में विश्व के नहीं मिलेंगे। जैसे भोजन करेंगे, अब रसगुल्ला भी दिया जाएगा तो नहीं खाएंगे, किंतु भक्ति में भक्ति कर रहे हैं और रसा रसमयी भक्ति और बढ़ती जाती है तो उसे तृप्ति और भी खाने की इच्छा होगी। यहाँ पर ये उदाहरण है, भक्ति कर रहे हैं कृष्णेतर जो वासनाएं हैं कामनाएं हैं उनके प्रति अरुचि है, इसलिए भक्ति हम कर रहे हैं कि नहीं, पहली बात। भोजन हम कर रहे हैं कि नहीं, हम स्वप्न में भोजन कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पेट ही नहीं भरता, खाते चले जा रहे हैं और किसी ने यदि उठा दिया तो मैं तो खाई नहीं, किंतु हम समझ रहे हैं उस समय स्वप्न में जब हम खूब खा रहे हैं, लड्डू आ रहा है, रसगुल्ले आ रहे हैं, पांतुए आ रहे हैं या दही सुंदर कलकत्ते वाली मीठी दही आ रही है और सब चीज़ें खा रहे हैं, पेट ही नहीं भरता और उसमें कुछ रस और साधन भी नहीं आता, तब तो ये हम सो रहे हैं और स्वप्न में ये सब चीज़ें खा रहे हैं, कहीं हमारा ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं कुछ किंतु आंतरिक भावना उसमें आ रही है कि नहीं और उसकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं, अनुभूति कुछ हो रही है कि नहीं, रसास्वादन हो रहा है कि नहीं, नाम में हरि कथा के श्रवण में ग्रंथों के भागवत के अनुशीलन में जो पांच प्रकार की भक्ति या नौ प्रकार की है उसके अंगों के अनुशीलन में हमें ये सब हो रहा है कि नहीं और ठीक ठीक हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन देखेगा, कौन देखेगा, हम विचार करेंगे, साधक विचार करेंगे, फिर गुरु विचार करेगा पीछे, जब पेट जी हमारा तो पेट नहीं भरता, रसा स्वादन भी नहीं होता। भक्ति का लक्षण जो बतलाया गया, यदि भक्ति आपकी हो रही है तो ये चीज़ें जरूरी होनी है, क्या चीज़, शांतिर अव्यक्त कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्या प्रीति तद्वसती स्थले इत्यादि भाव सूर्यात भावंकुरे जने। भक्ति आप कर रहे हैं तो यदि साधन भक्ति भी कर रहे हैं तो इसका आभास भी तो उसमें होगा, भाव भक्ति का नहीं ये लक्षण है, किंतु कुछ कुछ न कुछ भक्ति करते समय ये होगा, यदि ये सब देख रहे हैं ये हो रहा है, ये रसा साधन है प्रारंभ, एक ग्रास खा रहे हैं, दो ग्रास खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आएंगी। क्षमति संसार की सारी विपदाएं उसके ऊपर में, प्रहलाद महाराज जी जैसे टूटा है, द्रौपदी पांडवों पर लाखों विपत्तियां एक साथ आ जाएं, अभिमन्यु इत्यादि सारे पांचों पुत्र मारे जाएं, उनका साला कौन, पांडवों का धृष्टद्युम्न ये भी मारा गया, उनके ससुर द्रुपद जी मारे गए, कभी कोई रंचक हुआ उनमें कुछ प्रभाव पड़ा, पशुकृष्ण उनके साथ बस चित्त विक्षिप्त नहीं होता, सारे द्वारका के लोग मारे गए युद्ध में लड़कर कर, और कृष्ण कैसे बैठे रहे शांत प्रसाद। इस तरह से नहीं हो किंतु आंशिक रूप में तो होगा ही, जब भजन करेंगे, नाम करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, वैष्णव से सुनेंगे, विरक्ति अन्यत्र अन्यत्र विरक्ति होनी चाहिए, नाम में निष्ठा रुचि होनी चाहिए, जहाँ पर भगवान की लीला स्थल है वहाँ पर हमको प्रीति होनी चाहिए। जा करके वहाँ पर जहाँ गए, हाँ यहाँ पर नंदगांव में पहुँचिए और पहुँच जाइए वहाँ उद्धव क्यारी में। हाँ उद्धव जी आए, भ्रमर गीत चल रहा, गुरुदेव कैसे भाव सुन, ऐसी बिरानी मन जाने कब से स्नान ही नहीं किया, न भोजन किया न कुछ, सुंदर पुतली सी बड़ी सुंदरी राधिका जी फूलों के सेज पर सोए, छीण का है प्राण मानो अभी चले जाए और भौरे करें तू यहाँ से तू बोल मृगुल कपेंद्रम विद्युदे इत्यादि ये सब करें, आंखों में आंसू आ रहे हैं, बिरा में एकदम न जाने कैसी स्थिति है। उस स्थान पर जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें स्मृतियाँ आएंगी, तो अन्यथा तो जाएंगे कहीं अरे यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो ये सब पानी में डूबा बावला वृक्ष है, सब कुछ नहीं बेकार का, ये किसको होगा जो भजन परायण नहीं है उनको होगा, और जो भजन प्राणय होंगे इन सब चीज़ों में डूबे हैं, वहीं वहाँ जा करके कपड़े खोल करके ये और वहीं पर लौटने लगे, रोने लगे, हाँ देवी हाँ विष्णुनंदिनी जी हाँ गोपियाँ आप तो विप्रलम्ब परस की यहाँ पर मूर्ति होकर के जगत को शिक्षा, रोने लगा, प्रार्थना हमें एक इसका इतना भी छू जाए, ऐसे प्रीति हो तो बस स्थले प्रीति तो हो, इतना ना थोड़ा सा तो हो, प्रीति स्थले नाम में रुचि हो, नयनम गलदास्तुधार, ये तो कुछ उन्नत स्थल के इतना नहीं हो, इसलिए जो रूल आई आज हमको ये सब हृदय विकृत नहीं होता है। तदस्मशारम हृदय बतेदम यद गृह्यमाणो हरिना विक्रियेताद्यदा विकारो नेत्रे जलम कातृभे। कभी सोचा भजन करने के लिए आज ये सब अवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं, इसके लिए तो हाय हाय ये क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें, विश्व में जितनी आ सकती है एक पैसा बर्बाद हो जाने पर, जो उसके लिए हम मरते जीते हैं, और ये इतनी बड़ी भारी संपत्ति जिसके लिए घर बार स्त्री पुरुष सब छोड़ दिया और तनिक भी ये हृदय को स्पर्श नहीं करती, क्या बात है। गुरु जी से कहा किसी अपने अपने जैसे भाव जैसे हैं अपने से उन्नत, उनसे कहा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद उससे प्रार्थना किया ये सबके लिए, तो अभी तो साधनी भक्ति नहीं हो रही, यदि भक्ति होती तो अनुभूति अवश्य होती, जब अनुभूति नहीं हो रही है तो समझो जो हमारा ये साधन भजन बेकार का जा रहा है। तो जिन लोगों की परवाह नहीं है वो तो साधक ही नहीं है ये समझो, उनका घर बात छोड़ना बेकार है, समझो इस चीज को अनुभव करो, यदि ये दोनों ठीक चल रही हैं तो समझो जैसे विषय में विरक्ति जरूर आएगी, तीसरा जरूर आने के लिए बाध्य है, यदि पहला साधन भजन हमारा ठीक चल रहा है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सुख आत्मनिवेदनम इति पुनसार, यदि शुद्ध भक्ति जरूर ये भगवानुभूति जरूर आएगी, उपलब्धि होगी यहाँ, और साथ साथ में इतर विषयों में वैराग्य आएगा जरूर, यदि इतर वस्तुओं में वैराग्य नहीं है, पैसे चाहिए पैसे, महाराज जी पैसा नहीं है पैसा चाहिए क्या करेगा, अरे खाएंगे लड्डू पूड़ी रसगुल्ला, ये यहाँ पर तो ये बचता नहीं है, क्या होता है अरे हारमोनियम नहीं, टीवी सेंटर, ये क्या टेलीविज़न, ये गांव वाले वहाँ पर है, अने तो हमारे पास ही में ये है ना बंसल जी के घर में, चुपचाप महाराज जी को पता नहीं, महाराज जी सो जाते हैं 9 बजे इसके बाद में होता है, वहाँ पर पहुँच जाना, देखता है महाराज जी सो रहे हैं, महाराज जी इधर सो रहे हैं, जाओ चुपचाप कह देता है सच वो महाराज जी सो रहे हैं, चलो किसी को बतलाना मत, ये भक्ति सब है, इतर वासनाएं जरूर दूर होंगी, इस चीज़ को याद रखो, इसलिए सोचो विचारो ये हमारा भजन ठीक हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, क्या बात है, कहीं अपनी प्रतिष्ठा तो नहीं है इस भजन से, इन चीज़ों को विचार खूब ठीक से सावधान से, इसलिए शुद्ध भक्ति का स्वरूप जो है भक्त स्वरूप सिद्धा भक्ति, इसका अनुशीलन होना चाहिए। समझो उन चीजों को, इसके तरफ में बढ़ो और जरूर जरूर उसमें भगवत अनुभूति होगी। जितना तुम भजन करेगा जरूर किसी न किसी रूप में जरूर अनुभूति होगी ही, और यदि अनुभूति होगी तो बस विष्णु के प्रति आएगा। गुरु जी को ये नहीं, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, कहेंगे गुरु जी नियम इत्यादि किसके लिए है, जो लापरवाह हैं, जो भी भक्ति में प्रवेश ही नहीं किया है। अब विचार करके देखो, हम तो देखते हैं तो देखते हैं कि भाई अभी तो हम भक्ति शुद्ध हमारी नहीं, हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि भक्ति में जैसा निवेश होना चाहिए आवेश होना चाहिए, जैसे भोजन में आवेश होता है ना, आवेश कैसा आवेश, जैसे मधुमंगल जी कहते हैं रस कितने प्रकार के हैं, द्वादश कृष्ण ने कहा ये द्वादश का जे ग्वाला का बेटा अहिर जाति का गैया चराता है ये रस, ये सब रस नहीं है, रस कितने हैं, षड रस हैं। कौन षड रस है, कौन सा षड रस, षडरस तीत तिक्त अम्ल कटु कसाय और मधुर इत्यादि, ये रस है बेकार ग्वारिया, ये क्या जाने रस का विचार। हाँ जब रसोई यशोदा जी और रोहिणी जी मैया बनाती है उसके सुगंध से ही रस से नाक टपकने लगता है, मुख से लार टपकने लगता है, ये रस है, ये बेकार का, ये बलदेव तो डपोर संख है इसको कुछ आता ही नहीं, या रस जानता ही नहीं कि कितना रस है, बताओ तो बलदेव तो बता कितना रस है। इस तरह से भक्ति का विचार होना चाहिए, पुंखानुपुंख रूप से विचार करो, ये भक्ति का जो साधन के जो अंग हैं हम ठीक ठीक सुंदर रूप में पालन कर रहे हैं या नहीं, और कम से हमारी भगवत अनुभूति या भजन में कुछ अनुभूति हुई कि नहीं आज तक। और फिर इसके बाद में विचार करो जे मैंने जब हरिनाम लिया या दीक्षा लिया तब हमारी विषयों के प्रति जैसे आसक्ति थी आज उससे बढ़ गई है कि, यदि बढ़ गई समझो जी हमारा बेड़ा खत्म डूब गया। क्रमशः ये चीज़ों को विचार करो साधक होने के नाते, यदि कहो जी हम लोगों को वातावरण बड़ा गंदा है इसलिए नहीं हो रहा है, वातावरण ठीक नहीं भक्ति अनुशीलन का ये सब, पहले तो चिंता है ये भोजन लाओ, कुछ भोजन के लिए कुछ चाहिए, फिर और तरह की सब चीजें हैं, संग भाषा नहीं मिल रहा, त्रिवेकम महाराज जी ने एक बार गुरु जी से कहा, हम लोग सभी लोग थे त्रिवेकम महाराज जी, हम लोग को ये सब अवकाश ही नहीं मिलता ये सब करने का, अब हम मठ में नहीं रहेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, बाहर में रह करके पैरों के नीचे रह करके हम भजन करेंगे। गुरु जी ने कहा जैसे वहाँ जाएगा तो ठीक है, किंतु पेड़ की डाल यदि आंधी चली और गिर गई और तुम्हारे सिर के खोपड़ी के ऊपर में पड़ी, फिर क्या करेगा, क्या करेगा बतलाओ, तो ये कभी विचार करके तब जाओ। ये संसार है, संसार से कठिनाइयाँ प्रॉब्लम, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले गंगा जी सूख जाएंगी तब पार करेंगे, ऐसा मत सोचो। इसलिए ये सब चीज़ें रहें, उसी में अनुकूल प्रतिकूल समझ करके विषयों भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करते हुए प्रतिकूल को छोड़ते हुए क्रमशः बढ़ो, निष्ठा हो जाएगी धीरे धीरे धीरे, जो तुम्हारे प्रतिकूल विषय थे वो भी अनुकूल होते जाएंगे, और धीरे 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 जबकि नारद जी जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे नित्यानंद प्रभु और लोगों की भांति जब उत्तम अधिकारी हो जाएंगे हरिदास ठाकुर की भांति, तो जितनी भी चीज़ें हैं प्रतिकूल वो भी सब अनुकूल हो जाएंगे। साधन अवस्था में अधिकतर सभी विषय प्रतिकूल होती हैं, सभी चीज़ हमारा मन भी प्रतिकूल रहता है, शरीर भी प्रतिकूल रहता है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे प्रतिकूल दूर होता जाएगा, आसक्ति भाव तक कुछ प्रतिकूल चीज़ें रहती हैं उनका गंध रहता है, जब भावावस्था में पहुंचेंगे, प्रतिकूल तो दूर हो जाएगा किंतु गंध रहेगा, ये गंध कब दूर जाएगा दूर? भगवत दर्शन होने पर, प्रेम होकर के भगवत दर्शन होगा, आत्यंतिक वहीं पर अनर्थों की निवृत्ति होगी। इसलिए धैर्य के साथ में ठीक ठीक समझ कर साधन भक्ति का हम आरंभ करें, साधन भक्ति उसको ग्रहण करें और विचार करें इन सब चीज़ों पर। एक बात और, दूसरे श्लोक में जो बतलाया गया, यथा तरोर मूल निशीचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भोजो प्रसाद, क्या तात्पर्य? तात्पर्य क्या है? तरोर मूल निशीचनेन, पानी का, पानी से एक वृक्ष की जड़ में हम पानी देते हैं, तत् स्कंद भुजा उपशाखा तृप्यन्ति, उनका स्कंद, उसकी शाखाएं मोटी मोटी, पतली पतली टहनियाँ, उपशाखा, पत्ते, फूल, सब फल तृप्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं। भुजो उपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणा, प्राणोपहारश्च, प्राणों का उपहार, प्राणों का उपहार क्या है? प्राण का उपाहार, प्राण कैसे बचते हैं? बिना भोजन के, पानी के नहीं बचते। प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणां, जैसे भोजन करने से, मुख में भोजन देने से सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तथा सर्व क्या अच्युत की पूजा करने से सभी जगत में साधक भी सारे प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब इस पर विचार करें, यथा तरो मूल निशेषण, तरु का मूल, पेड़ का मूल में यदि पानी दिया जाए, दी जाए तो स्कंद भुजा उपशाखा पत्ते फूल पौधे सब तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपने मुख में, यह दूसरा उदाहरण थे, वैसे ही मुख में आहार देने से सारी इंद्रियां ये सब तृप्त हो जाती हैं। वैसे ही अच्युत की पूजा करने से सब कुछ, सारे लोग सब तृप्त हो जाते हैं। अब उदाहरण पर को अब इस पर ले आइए, देखिए वास्तविकता पर। यथा तरु मूल निषेचन, एक तरु है, पेड़ है, इसमें सारी चीजें पत्ते टहनियां सभी कुछ, नीचे में पानी दिया जा रहा है, उसे सब कुछ तृप्त होगा। किंतु यदि देखा जाए कि हम पानी जड़ में भी दे रहे हैं और फूलों और पत्तों में भी पानी दें, टहनियों पर दे दें, तो क्या हर्ज है? धूल उड़ करके उस पर जमा है, कभी कभी फुहारे के साथ में उसको धो देते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? नीचे जड़ में भी पानी दें और ऊपर में पत्तों में भी पानी, डालियों को भी धो धा करके ठीक कर दें। इसलिए जितने देवता देवी हैं और मनुष्य हैं, ये सारे पेड़ हैं ना, मूल पेड़ एक मूल है उसका, और ये सारा विश्व, जितने देवता देवी मनुष्य कीट पतंग, ये सब में कोई धड़ ले लो, कोई टहनी ले लो, कोई फल ले लो, फूल ले लो, अब इसमें हम पानी देते हैं तो सभी तृप्त हो जाते हैं, ठीक है। हमने देवता देवियों को भी पूजा की, मनुष्यों को भी हमने तृप्त करने की चेष्टा की, जो जैसा करता है बस उसकी भी तृप्ति कर देते हैं, और कृष्ण की भी करते हैं, हर क्या रहा, हर्ज है भाई, बहुत कुछ हर्ज है क्या? इसके लिए वो दूसरा उदाहरण दिया, क्या प्राणोपहार से जतेन्द्रियाणाम, प्राण में केवल उपहार दो, आँख में उपहार मत दो, यदि देगा तो क्या होगा? जैसे पानी का राज्य सब जगह दे देंगे, पेड़ में भी, डाली में भी, पत्ते में भी, फल में भी, फूल में, तो उसमें कोई हानि नहीं है, कह दें यह गलत है, इसके लिए दूसरा उदाहरण देते हैं, नहीं ऐसा मत करो,
उदाहरण बदल दिया,
उदाहरण बदल करके दूसरा उदाहरण दिया, क्या दिया है? प्राण में उपहार देने से जैसे इंद्रियां सतेज होती हैं और प्राण के बदले आंखों में हार दो दूध, कान में दे दो, पेट को चीर करके यहाँ भर दो, क्या होगा? बस मर जाएंगे हम, इनमें शक्ति नहीं है ये ग्रहण करने की। यदि पत्तों में डालियों में पानी दिया जाए 10 बरस और मूल में नहीं जाए पानी तो पेड़ सूख जाएगा। इस तरह से आहा मुख में न दे करके इंद्रियों को दिया जाए, भले ही वो मरेंगे, जीवित भी नहीं रह सकते। और भी बातें, एक से शिक्षा, कृष्ण की सेवा करने से हमारी आत्मा तृप्त हो, जय आत्मा संप्रसिद्ध, क्या है वो, सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्खजे अहेतुक्य अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्ध। वही पुरुष का परम धर्म है, समस्त पुरुषों का, समस्त जीवों का यही परम धर्म है। क्या धर्म है? परम धर्म, सबई पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधोक्ष, अधोक्षज के प्रति कैसी भक्ति, अहेतुक्य बिना किसी हेतु के और अप्रतिहता, रुक रुक नहीं, बाधा विघ्न वाली नहीं, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से निरंतर प्रवाहित होने वाली, चित्त की वृत्तियां जिनमें लगे, भक्ति लगे, तब तो होगा। और बिना किसी कारण के, बिना किसी कामना वासना, और निरंतर चित्त की वृत्तियां अपने आप भगवान की तरफ में प्रवाहित होते जाए। कैसे? तैल धारावत, तैल माने यहाँ मधु धारावत, ऊपर से तार बंध गया, बीच में यदि टूट गया तो बस, कभी हवा का झोंका आया उसे तोड़ दिया नहीं, उसे लगा हुआ पीछे। और विचार करके देखो जी हमारी क्या स्थितियाँ हैं, विचार करके देखो, विषय की आंधी हमारी भक्ति की प्रवृत्ति की जो थोड़ी सी है वो कैसे ऐसे बहा करके तोड़ तो नहीं दे रही, विचार करके अच्छी तरह से देखो, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, बुद्धि दी है, इसलिए विचार करके देख करके चलो। इसलिए क्या बतलाए, सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्खजे जयात्मा संप्रसिद्धति, जयात्मा संप्रसिद्धति माने क्या होगा भाई, आत्मा का अर्थ दो होता है, आत्मा और परमात्मा, कहीं कहीं पर आत्मा का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी है, कहीं परमात्मा के लिए है, यहाँ दोनों का तात्पर्य, दोनों में भी आत्मा गौण है और परमात्मा मुख्य है। यदि इसके द्वारा सबई पुंसाद है ना, वो धर्म है क्या है, अधोक्षजे, अधोक्षज माने यहाँ आत्मा लो, तो वो अधोक्षज जो आत्मा परमात्मा है वो प्रसन्न होने से ये जीवात्मा भी प्रसन्न होगी। तो यदि भक्ति करते हो और तुम्हारा चित्त दुखी है तो क्या समझो, यदि तुम्हारा चित्त भक्ति करने पर भी चित्त प्रसन्न नहीं है, प्रहलाद महाराज जी को विष दिया गया, सांप काटे, चारों लाखों तरह की उनको प्राण विनाश के लिए चेष्टा की गई, भग गए, भग करके जाए का यदि मृत्यु है तो कौन रक्षा कर सकता, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, इस चीज को याद रखो, कहाँ भग करके जाए। इसलिए भाई जातना संप्रसिद्धति, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके द्वारा वो परम प्रभु जो कृष्ण हैं, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, तो ये हम कैसे समझेंगे जो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रसन्नता तो वो समझेंगे, हम कैसे, अरे भाई तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे निश्चित रूप में, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है समझो जी वो प्रसन्न है, और यदि तुम्हारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है समझो जी तुम्हारी भक्ति से वो प्रसन्न नहीं है। आ रहा है समझ में, समझ रहा है कुछ, देखो विचार करो, यदि हमारा चित्त खिन्न है जैसे नारद जी का चित्त खिन्न था व्यास जी का, और नारद जी आए, खिन्न होने का कोई कारण नहीं था, भक्ति उनकी ठीक थी, तो भी जगत को दिखलाने के लिए
और भागवत को प्रकाशित करने के लिए, कृष्ण की और गोपियों की महत्ता प्रकाशित करने के लिए यह एक पहले से निर्धारित क्या था,
ड्रामा ना
है,
योजना,
योजना थी पहले से सुविचारित रीप्लान परियोजना थी, इसलिए ऐसा किया। प्यार जी ने कहा हमारा चित्त असंतोष, क्यों, कोई भक्ति भक्ति नहीं थी ना, सब आई पुनसान कुछ गड़बड़ी थी, क्या गड़बड़ी, उन्नत अधिकार की भक्ति तो थी, भक्ति में कृष्ण का वर्णन भी किया, किंतु गोपियों वाली भक्ति, ब्रजवासियों की जो भक्ति थे उसका भी विचार, इसलिए संपूर्ण में इनका चित्त नहीं था। इसलिए हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, तो ये कैसे समझेंगे, हमारा चित्त भी प्रसन्न और संतुष्ट होना चाहिए, तो ये हो रहा है कि नहीं, यदि सब समय चारों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, चित्त खिन्न है, तो क्या समझो हमारी जो भक्ति है अभी भक्ति नहीं है, और इसे प्रसन्न है भगवान भी नहीं हुए हैं, इसलिए हम भी प्रसन्न। अच्छा, कृष्ण चाहे हम भजन करें और कृष्ण चाहे जैसे इसके ऊपर में कोई विपत्ति आपत्ति ना आए, आ सकती है, कृष्ण जानते नहीं हैं हमारे ऊपर में विपत्तियाँ इतनी है, ये विपत्तियाँ क्या है, विपत्ति नहीं है, हम स्वप्न में देख रहे हैं असल में और मर रहे हैं, विपत्ति है ही नहीं यदि भजन कर रहे हैं, समझने का दे रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते थे जिसने अपने परिवेश में इन विपत्तियों को नहीं लाया पांडवों जैसा जानबूझ करके, वो क्या भजन कर सकता है, नहीं भजन कर सकता, इसलिए परिस्थितियों में रह करके भगवान का भजन करना सीखो, नहीं तो क्या भजन, उनके 10-20 मामले चल रहे हैं, कितने तरह का झमेले उनके, और शांत चित्त होकर के लिखवा रहे हैं, भगवान राज जी बैठे हैं, सब लोगों से इधर उधर बात कर रहे हैं, उधर बात में, और आज प्रबंध पूरा नहीं यदि होगा तो फिर कल तो जाना है नृसिंहपल्ली, आज प्रेस में दे करके छपना है, और कब से सवेरे से लेकर के बैठे हुए हैं कागज कलम, फिर एक थोड़ा सा उसी में से समय निकाल करके झर 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 करके 3-4 पेज बोल दिया, बस जाओ, बस भवन महाराज का राइटिंग भी ऐसा सुंदर, और उसमें एक गलती नहीं, हर से ही दीर्घाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कहीं कुछ भूल नहीं, दे दिया प्रेस में, बस छप गया, और सवेरे लेकर के तैयार हो गया, कॉपी बन गई जाए नृसिंह देव में, ये भक्ति का विचार है। इन दोनों श्लोकों को विचार करके और 7:30 भी अब बच गया, इन पर विचार करो, तुम शुद्ध भक्ति में लगो, चित्त आत्मा प्रसन्न है तो भगवान को प्रसन्न, तो इसका मतलब ये भगवान नहीं प्रसन्न है, हमारा साधन में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नहीं, भगवान तो प्रसन्न होने के लिए आए, यदि हम भक्ति करेंगे वो अप्रसन्न अपने आप हो जाएंगे, उनको किसी चीज़ की कमी है, जो तुम भक्ति नहीं कर रहे हो इसलिए प्रसन्न नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसा नहीं, वो तो आए हैं इसलिए, चैतन्य महापुरुष किस लिए आए, प्रेम देने के लिए, वो तो खो जाए ढूंढ ढूंढ करके गली गली में जा रहे हैं, कोई ले लो प्रेम, कोई प्रेम ले लो, और कोई नहीं लेता है, इसलिए इन पर विचार करके शुद्ध भक्ति के करने में तुम आप लोग सब विचार करके लगे, कहीं कोई प्रतिष्ठा की आशा तो नहीं, कोई लौकिक आशा तो नहीं, लौकिक कोई कामना तो नहीं, कोई वासना तो नहीं, तथा भक्ति देवी नहीं आएंगे, वो क्या श्लोक है जी, भक्ति जावत मुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची, वो पिशाची है जो अद्वैतवादियों की मुक्ति है, मायावादियों की मुक्ति सबसे श्रेष्ठ चीज है, उसको पिशाची बतलाया, इसके आते ही भक्ति नष्ट हो जाती है, तो इनमें से कोई चीज तो नहीं है हमारे अंदर में, कामना वासना संसारी और सब चीजें छोड़ना बड़ा भारी कठिन है भाई, किंतु भक्ति यदि आ जाएगी थोड़ी सी भी, इसलिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विचार करेंगे कल से होगा, यदि तबीयत ठीक रहेगी तो भजन रहस्य के संबंध में हम बताएंगे, भजन रहस्य और उसी में वो भी आ जाएंगे, भक्ति रसायन इत्यादि सभी उसमें आ जाएंगे, आप लोग भजन कीजिए और हमारे गुरु परंपरा के जो विचार हैं।